उसके लिए। जो छिपा हुआ प्रेम होता है उच्च कोटि का होता है। और ये कहो जो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो ये प्रेम उघड़ गया, नंगा हो गया, इसमें कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए राधा जी का जो वर्णन श्रीमद् भागवत इत्यादि में परोक्ष के रूप में है। कैसे? कृष्ण अंतर ध्यान हो गए रास से, सब गोपियां उनके लिए विरह में कातर हो गई, कृष्ण को ढूंढने लगी, पागल हो गई, उन्माद ग्रस्त हो गई। कुछ दूर आगे गई तो फूलों से, पौधों से, तुलसी से, पेड़ों से पूछ रही, कृष्ण किधर गए, कृष्ण विरहणी हो गई। आगे बढ़ी, कृष्ण का एक सुंदर छोटा सा पैरों का छाप देखा, बड़ी आनंदित। अब उनको सहज रूप में अनुमान हुआ जब इधर ही गए पैरों को छाप लेकर के, इतने में देखा एक किशोरी का पैर वहां पर। कुछ गोपियां प्रसन्न हुई, कुछ अप्रसन्न हुई, हुआ ना? कौन कौन अप्रसन्न हुई? जो देखा जी हमको साथ नहीं लेकर के, इसके साथ में जो जा रही है उसके प्रति ईर्ष्या जागृत, देखो तो हम लोगों के बीच से इसको लेकर के और अंतर ध्यान हो गए, हम लोगों को साथ नहीं ले गए। तो उसमें जो जिस दल की थी, राधा जी के दल वाली बड़ी प्रसन्न हुई, ओ हमारी किशोरी जी को साथ लेकर के गए। और दूसरी जो चंद्रावली प्रभृति की सखियां थी, उन्होंने देखा जी हमारी सखी तो यहाँ रही और इसको लेकर के चले जा रहे हैं, ये कौन गई? तो राधा जी के पक्ष वाली कहती है, अरे ये कृष्ण भगवान की इसने अधिक सबसे आराधना की होगी, इसलिए ये उसके आराधना के बल से इसको ले गई, ये इसमें करने की कहने की बात क्या है। देखा आगे फिर और गई, देखा जैसे उस किशोरी का पैर नहीं, अनुमान कर रही है, क्या अनुमान कर रही है? हठात तो उसके पैर नहीं दिख रहे हैं, तो ये गई कहाँ? अजय वो जरूर थक गई होगी, और ये मैं चल नहीं सकती इसलिए उसको कंधे पर उठा दिया, कोई भी माने। अच्छा फिर थोड़ी देर के बाद में देखा बैठने का चिन्ह है और वहाँ पर फूल सब गिरा हुआ है, और देखा एक लता है उसमें नीचे का फूल नहीं है, ऊपर वाला केवल फूल है, जो हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता वो तो है, और नीचे जिसको पकड़ा जा सकता है उसका सब फूल नहीं है, और उसमें से फूल कुछ यहाँ पर गिरे हैं। वहाँ निकट जाकर के देखा जे यहाँ पर कृष्ण के चरण चिन्ह तो हैं किंतु केवल पंजा है, नीचे एड़ी नहीं, जिसका मतलब क्या हुआ? उसको पकड़ करके एड़ी उठा करके थोड़ा सा जितना ऊंचा हो सकता था ऊंचा हो करके परिश्रम से वो फूल चयन किया, और यहाँ पर चयन करके उसका यहाँ पर श्रृंगार किया, वो श्रृंगार भट है वृंदावन। थोड़ी देर के बाद में देखा अरे कोई यहाँ पर लेटी हुई, कौन है ये? तो देखा जैसे एकदम रोती 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 वही सखी जिसको लेकर के गए थे वहाँ पर एकदम लोट पोट कर रही है और एकदम मूर्छित हो गई है, अरे यही वो है। फिर उसको पानी का छींटा दिया, उठाया पिटाया उसको, तो वहीं पर कह रहे हैं अनयाराधितो नु भगवान, अपेक्षा भी आस्वादन करते, महाप्रभु जी आस्वादन करते मूर्छित हो जाते। यदि कोई हरि नाम करता है, एक भी जो नाम करता है तो वह वैष्णव है, उसको प्राण के समान आदर करो। अचेत दीक्षास्ति, यदि दीक्षा है तब क्या करो, भाव के साथ में अपना बंधु जान करके उसको सेवा भी करो, प्रणाम भी करो। और उन्नत कोटि का भक्त यदि है, जो निंदा इत्यादि से शून्य हो गए हैं, उनको किसी की निंदा नहीं, स्तुति नहीं, भगवत एकदम सब समय भगवान के नाम में तन्मय है, उनको अपना हृदय समझ करके, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर करके उनकी सेवा करो। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा यह वैष्णव का लक्षण है। देखो हरिदास ठाकुर जी कौन जाति के कौन थे, उनके गुरु कौन थे, महाप्रभु ने उनको क्यों आदर करके उनके अपने अंक में लिया, क्यों? यदि हमारे गुरु से ही दीक्षित कोई है और वही वैष्णव और बाकी सब अवैष्णव हैं, वैष्णव नहीं हमारे आदरणीय नहीं है, यह बात सर्वथा गलत है। महाप्रभु के समय में हम देखते हैं, ये हरिदास ठाकुर को लीजिए, राय रामानंद किनके शिष्य थे, ये महाप्रभु जी को वो शिक्षा दे रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, किनके शिष्य थे, महाप्रभु जी के गुरु जी के शिष्य थे, किंतु भगवान का कितना भजन उच्च कोटि का उनमें तत्व है, इसलिए उनको अपना सर्वोत्तम जो रूप था महाभाव रसराज महाभाव वो दिख रहा है, जो और किसी को नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है, गोदावरी में दिख रहा है।
इनके गुरु का उल्लेख क्या है,
कोई उल्लेख ही नहीं है। कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण गुरुद्वय अवतार प्रकाश, पांच प्रकार के रूपों में वो विलास करते हैं भगवान। कृष्ण गुरुद्वय भक्त अवतार और प्रकाश। गुरुद्वय माने कृष्ण तो कृष्ण, गुरुद्वय माने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, भक्त कृष्ण के जो भक्त हैं, अवतार नित्यानंद अद्वैताचार्य अवतार, और प्रकाश नित्यानंद पुरुष। इनकी वंदना करके अब गुरु की वंदना करते हैं। यही छह गुरु श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोसाई गुरु शिक्षा गुरु जी हमारे कहते हैं, यही छह हमारे गुरु हैं। और फिर कहते हैं शिक्षा गुरु हमारे, हमारे शिक्षा गुरु। इनमें किस सब देखेंगे, गोपाल भट्ट जी किसके शिष्य थे, महाप्रभु के शिष्य थे न किसके शिष्य थे। सनातन गोस्वामी जी के गुरु का नाम क्या था, क्या था, महाप्रभु जी ने दीक्षा दिया। रूप गोस्वामी को महाप्रभु जी ने दीक्षा हरि नाम दिया। बैठ, महाप्रभु जी इनको वैष्णव मानते हैं कि नहीं मानते। कहीं भी कोई कृष्ण नाम ग्रहण कर रहा है उसको वैष्णव मानते हैं शुद्ध रूप। और यदि वो तत्वज्ञ है रसिक है तो कहने की बात क्या है, इसलिए सबका आदर करना चाहिए। हमारे गुरु के हैं इसलिए आदरणीय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भक्ति तत्व का विरोध है। विशेष करके ऐसे ही में निंदा और अपराध हो जाता है। ये सबको विचार करके सब वैष्णव लोगों को आदर देना चाहिए। यदि मैं किसी पौधे में पानी दे रहा हूं, जैसे पौधा ठीक हो संजीव, और दूसरे आदमी ने कहा महाराज जी आप थक जाएं आप रहने दीजिए मैं जरा पानी दे दूं, तो वो व्यक्ति प्रसन्न होगा कि और असंतुष्ट होगा, समझो इस बात को। क्या कह रहा, मैं पानी दे रहा पेड़ में और ये बच्चे ने आकर के कहा, ये आपने उसने कहा महाराज जी आपको
ये है। गली गली कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई आवाज लगाऊं गली गली कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरे कोई आवाज लगाऊं गली गली जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए जिन
ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए।
हाँ जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए जिन हाँ माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए माया ओ सोना
मंजन सलाह क्या चक्षुर उन्मिलि तंग जीन तस्मयी श्री गुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। बैठो बैठो तुम लोग भी सुनो। पहली बात ये अभी कल ही एक कल्याण की प्रति मैं देख रहा था। कल्याण निकलती है ना गोरखपुर से, उसमें लिखा था किसी अनुभवी विद्वान ने डॉक्टर ने लिखा था आजकल विदेशी टॉफियों में अच्छी अच्छी जो टॉफियाँ होती हैं उनमें गाय की चर्बी से बनी होती हैं, उसमें गाय की हड्डियों से कुछ चीज़ें बनती हैं उसमें रस से इन सब चीज़ का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका बहुत असर पड़ता है। इसलिए मांस से मेद से हड्डी से इत्यादि से बनी हुई चीज़ों में भले ही उसमें कुछ हो शक्ति हो या कुछ और सब तरह तरह के लिखते हैं तो उससे बड़ी हानि होती है, उसमें तामसिक चीज़ें भर जाती हैं और उसका रूप रेखा स्वभाव चरित्र सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए प्रसादों में उसे तो अच्छा पेड़ा है नहीं मिले बताशा लेकर के ऐसे दे दो वो ठीक है। आजकल टॉफियाँ विदेशी देसी इधर उधर की बहुत गंदी गंदी चीज़ें आती हैं, इसलिए टॉफी भगवान को भोग मत देना। आज जो चीज़ भगवान को भोग नहीं दिया जाता उसका दूसरों को भी नहीं देना चाहिए, अपने भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल ये कुछ ऐसी चीज़ें पड़ गई हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करती हैं, इसलिए हमारा चरित्र स्वभाव सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए इन चीज़ों से सावधान रहने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी बात एक प्रामाणिक वल्लभाचार्य जी के चरित्र में सूरदास का चरित्र आया है। सूरदास जी वृंदावन में वृंदावन के गोवर्धन के पास ही में एक स्थान है जिसको चंद्र सरोवर कहते हैं, वहीं पर रह करके भजन करते थे अंतिम दिनों में। वो जन्मांध थे कुछ दिखता नहीं था, सुनिए इधर जन्मांध थे किंतु जब भजन लिखते थे तो कृष्ण का जो रूप है उसका बड़ा सरस मधुर वर्णन करते थे। उनके वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ जी, वो सूरदास के वल्लभाचार्य जी के देहांत के बाद में प्रकट होने के बाद में बहुत ही शुद्ध महात्मा, विद्वान, रसिक माने जाते हैं। राधा पक्षी राधा जी का भजन विशेष रूप में करते थे। तो एक दिन अपने भक्तों को कहा, जे देखो ठाकुर जी को एकदम नंगा बिल्कुल करो, नंगा रूप, वो बाल गोपाल के मूर्ति है ना, उनकी सेवा होती, अजय एकदम नंगा कर दो, और नंगा करके खड़ी कर दो, और कोई भी ड्रेस, बंसी, मोर मुकुट इत्यादि कुछ मत देना। ऐसा ही कर दिया। सूरदास को बुलाया, महात्मा जी, सूरदास जी, आज कृष्ण का थोड़ा सा वर्णन कीजिए, तो कैसा रूप है, बड़ा विचित्र रूप है, कैसा? तो उन्होंने रूप वर्णन किया, वो आज तक आपका ऐसा रूप हमने नहीं देखा, कैसा सुंदर आपका रूप है, आपके कपड़े कहाँ चले गए, किसने चोरी कर ली, आपकी आज बंसी कहाँ चली गई, ब्रज में तो आप बंसी छोड़ते नहीं, बंसी कहाँ चली गई, और मोर मुकुट तो ससमय धारणी, मोर मुकुट आज का कहाँ चलाए, नंगे बिरंगे बात, अद्भुत आपका रूप बना, ये किस दृष्टि से देखा है? आत्मा की दृष्टि से देखा, इस दृष्टि का कोई मूल्य नहीं, यह रहे चाहे जाए, ये कहना है। वो दृष्टि कैसे आए? इसलिए एक आदमी केवल ताली ही बजाता रहे और भगवान का नाम न करे तो उसका क्या फल होगा, और एक आदमी केवल हरि नाम, कृष्ण नाम करता है, ताली बजाए और न बजाए, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यदि हरि नाम के साथ में ताली है तो बहुत सुंदर है, और हरि नाम के साथ में ताली नहीं बजती है, और केवल ताली बजती है, केवल हरि नाम नहीं होता है, आंख आ जाए उनसे कुछ नहीं, इसके महत्ता को हम लोग समझेंगे। भगवान के नाम साथ में यदि कुछ रहे तभी ठीक है, भगवान के नाम साथ में कुछ भी नहीं रहे तभी नाम रहे तभी श्रेष्ठ है। अच्छा, एक बात और है इसमें, मैं अपने अनुभव की और अपनी परंपरा और ब्रह्मा जी से लेकर के ये सब बातें कह रहा हूँ, शास्त्र की बातें। यदि कोई बात हम अपने आप कहें, कोई रचना करें, कोई संगीत पद्य बने, और एक सिद्ध महापुरुष का कहा हुआ कीर्तन है, दोनों में कौन सा ठीक है? जैसे मीराबाई, तुलसी, सूर, कृष्ण के बहुत से भक्त, भट्ट जी इत्यादि बहुत से भक्त लोग हैं, और एक हम अपने आप पद रचना करके करते हैं, तो दोनों में सिद्धि किसकी होगी? उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म, और इसको क्या अपने आप जो बनाते हैं ना, ये साधारण, इसका अधिक फल नहीं होता। इसलिए हम लोगों को जहाँ तक चेष्टा करनी चाहिए वह कीर्तन करें जो सिद्ध महात्माओं से होते हुए चलते आ रहे हैं। जैसे ये जो हर महामंत्र है हरे कृष्ण, ये कहाँ से आया? कृष्ण से आया, कृष्ण से आकर के वो वेदों में आया, वेदों में कलि संतरण उपनिषद में आया, वहाँ से चलते चलते हमारे ऋषियों की परंपराधार से चैतन्य महाप्रभु जी आए आज से 500 वर्ष पहले, और उन्होंने जगत में इसका प्रचार किया, और तब हम लोगों को उस धारा से, गुरु परंपरा की धारा से ये मिलता है, इसलिए ना इसका महत्व है। इसलिए गुरु परंपरा की धारा में या सिद्ध महापुरुष हों, उनके कीर्तनों में, पदों में वह शक्ति रहती है संचरी, उसका बहुत ही महत्व और फल है। अपने आप भी हम लोग हरिनाम करते हैं, गुरु की क्या जरूरत है, ये दलालों की क्या जरूरत है कुछ जरूरत? कोई दलाल की जरूरत नहीं, अपने आप ग्रंथ में लिखा है, इधर से सुन लिया, इधर से सुनते हैं, हजार जगह सत्संग होता है, बस महामंत्र हरे कृष्ण कर लिया, और गुरु को करने की क्या जरूरत? अब महामंत्र ही ये हरे कृष्ण नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, इसके करने से ही हो जाएगा, यदि मन से नहीं करते हैं, ऐसे भी करते हैं तो भी उसका फल होगा, तो गुरु करने की दलाली देने की क्या जरूरत है, किसी के चरण में अपना सिर बेचने? नहीं भाई, इसमें एक बात है, क्या है? नारद जी ने कहा उनको, वाल्मीकि जी को, डकैत को, राम राम बोलो तो, बहुत चेष्टा किया नहीं निकला, बहुत बहुत कुछ किया नहीं निकला, उन्होंने कहा जैसे अरे मारो मारो करता है तो, मार काट तो करता है तो करता हूँ, कल जैसे ही करो मरा 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 करो मरा मरा, हाँ ये तो कर सकता हूँ मरा मरा कर। किंतु चूंकि नारद जी ने दिया था इसलिए कुछ दिनों के बाद में जपते जपते क्या हुआ, राम राम आया। और राम राम के बाद में उन्होंने जो शक्ति संचरित की, ये शब्द ब्रह्म नाम उन्होंने जो सिद्ध करके, अपने सिद्ध थे इसलिए सिद्ध नाम दिया, उस मंत्र में शक्ति है। और शक्ति से ऐसा किया, कुछ दिनों के बाद में ब्रह्म तत्व को जानने वाले राम ली जन्म के पहले की बात उन्होंने पहले ही कह दिया, अभी आएगी रामलीला भी होगी और उसके पहले उन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया। बहुत भविष्य के ज्ञाता हो गए, समस्त वेदों के सार को उन्होंने रामायण में उन्होंने भर दिया। आज तक वो जीवित हैं, अमर है ना। यही हम तो बहुत बहुत करते हैं, हरे कृष्ण कहते 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 रच पचे जाते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। किंतु यदि गुरु ऐसे रहें और शब्द ब्रह्म यदि दें तो उस नाम का महात्म्य कुछ और हो जाता है, जैसे नारद जी ने किया। इसलिए हमारी परंपरा में जो आए हैं उसको जो ऋषियों ने महर्षियों ने जो गान किया उनका ही हम लोगों को अधिक ज्ञान कर गायन करना चाहिए। नए नए कुछ नहीं, उसे होगा कुछ मन तो लगेगा, मनोरंजन भी होगा, किंतु वह चीज़ नहीं आई जो कृष्ण में ब्रज में प्रेम होकर के और उसको ब्रज में पहुंचा देगा। इसलिए हमारी परंपरा में जो शुद्ध तुलसी जी के, मीरा जी के, सूरदास के, बड़े बड़े भक्तों के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, उन्हीं का अधिकांश रूप में गायन किया जाए तो कृष्ण उसकी सुनेंगे और हमारी बात अभी सुनेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है। कहते हैं कि देखो हमारे भक्तों के बनाए हुए किए हुए कीर्तनों को करता है इसलिए झट उन पर कृपा हो जाए। अच्छा एक बात और, हनुमान जी हैं, एक समय द्वारका की बात है, रुक्मिणी और सत्यभामा माँ जी बैठी थी, कृष्ण बैठे थे, गरुड़ जी को बहुत ही ऐसा अभिमान था जी हमसे तीव्र गति वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सबसे अधिक तेज चलता हूँ। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, कृष्ण ने, जरा हनुमान जी वहाँ पर हैं, कौन जगह में हनुमान जी, तीन पुरुष माने तिब्बत आज का, वहीं पर उनका स्थान है, जरा उनको बुला लाओ। तो ये गए, झट उठ करके मन के बेग से वहां पर पहुंचे और हनुमान जी वहां पर शोक बड़े विरह में आतुर हो गए। राम तो चले गए हैं, कृष्ण यहाँ पर कुछ शिक्षाएं हैं, शिक्षा क्या हनुमान जी को राम से कृष्ण से चिढ़ है या क्या है, जो उनका कृष्ण कृष्ण नहीं कह रहे और कृष्ण के कहने से बुलाने से भी नहीं आए और इधर में कहा गया कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है, राम भी उसके अंदर में है, तो वो राम राम कहने से आए और कृष्ण कहने से क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो ये उनका अपराध हुआ कि नहीं, राम राम कह रहे थे वो कृष्ण कृष्ण और कृष्ण के रूप में नहीं आए, ऐसे तुलसीदास के भी संबंध में सुनते हैं, वो आए कृष्ण को देखा का जैसे, मैं तो आपको उसी समय प्रणाम करूंगा, जानेंगे जी आप हमारे इष्ट हैं, जब धनुष बाण लो हाथ, तो देखा जैसे साथ में सीता जी आ गई, धनुष बाण उन्होंने दे दिया, उनको प्रणाम किया। तो ये तुलसीदास जी की कृष्ण विरोधी थे ना, क्या बात थी, कृष्ण के भक्त जो हैं वो ये कहते हैं कि हरे राम में भाई हरे राम दशरथी राम मत लाओ, वो आएंगे रसाभास हो जाएगा, यहाँ पर राधा कृष्ण हरे और कृष्ण हैं, हरे माने क्या, हरा कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाली राधिका जी, और वहाँ पर कृष्ण बैठे हैं और उसी आसन पर उसी पद में राम को और सीता जी को बैठाओ तो ये भक्ति विनष्ट हो जाएगी, एक ही तत्व हैं, खिचड़ी मत बनाओ, अपने अपने स्थान पर उनको रहने दो। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है, इधर राम कृष्ण, तो दोनों को एक साथ मर, क्या होगा, रामचंद्र जी का स्वरूप कृष्ण ही राम रूप में मर्यादा में बंधे हुए हैं, और कृष्ण कैसे हैं, मर्यादा को कहाँ पैरों तले ठोकर मार करके उड़ा दिया, ब्रज से उड़ा करके कहाँ फेंक दिया, परम मर्यादा से बदले में मर्यादा के लिए सीता जी को भी प्रत्याग कर सकते हैं, किंतु कृष्ण में मर्यादा से बंधे हुए नहीं, ये प्रेम के, इसलिए इनमें प्रेम का माधुर्य है। राम कृष्ण ही वो चीज को दिखलाने के लिए राम के रूप में आए हैं मर्यादा तक, इसके बाद में तब माधुर्य रूप में प्रवेश होना। इसलिए यहाँ पर ये चीज है, वो हनुमान जी हैं वो मर्यादा में बंधे हुए हैं, वो स्वामी हैं, वो प्रभु हैं, राम के कंधे पर ये नहीं बैठ सकते। जब यही हनुमान जी गोपीश्वर बन गए तो रास को वहां पर दर्शन किया, गोपीश्वर उन्होंने गोपी बन गए, तब कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करें, तब फिर वहां पर राम राम नहीं करेंगे। इसलिए ये भजन की निष्ठाएं ऐसी हैं, जब तक शुद्ध परंपरा में गुरु परंपरा की धारा में नहीं आया जाए, ये सब मालूम नहीं होगा तो हम गड़बड़ कर देंगे। इसी तरह से वहां पर भी रुक्मिणी नहीं हुई, रुक्मिणी जी हो गई सीता जी, क्यों? वो दाक्षिण्य भाव वाली हैं, यदि दाक्षिण्य भाव मैंने क्या, उनमें ये पति भाव अर्थात मैं दासी हूं वो प्रभु, और रुक्मिणी जी सत्यभामा का कैसा है, कुछ सखी भाव युक्त है, कुछ मान भी करती हैं, वो राधा जी के तत्व से बनी हैं, इसलिए उनमें कुछ प्रेम की अधिकता है, कहे मैं सीता नहीं होंगी, ये उनकी निष्ठा है, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं है। इसलिए अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी निष्ठाएं हैं, दोनों एक ही तत्व होने से भी तत्वता, किंतु रसगत विचार से जब देखेंगे तो उनका उत्कर्ष है, तब फिर ऐसी बातें नहीं। मैंने इसलिए कहा जयराम श्रीराम जो है ना बहुत अच्छा चीज है, भगवान का नाम है, किंतु जो एकांतिक राम का भक्त होगा वो ये कीर्तन नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? सीता जी का नहीं, इस चीज को समझ, ये किसी अद्वैतवादी का बनाया हुआ, मैं जानता हूँ पहले यह कीर्तन नहीं था, सिया राम जय जय राम, उसमें लक्ष्मण जी का भी, उनका नाम हनुमान जी का भी नाम, ये सब आ जाता था, बिना राधा जी का कृष्ण का जो भजन करता है, अब बिना सीता जी का राम का भजन जो करता है वो व्यर्थ जाता है। अच्छा, इसमें भी एक निष्ठा होनी चाहिए, अनन्य भाव, राम सीता होने पर भी जो राधा कृष्ण का अनन्य भजन करता है, दोनों को बराबर करते हैं, अभी अभी कोई अभी प्रवेश नहीं किया रस में, भजन में प्रवेश करने, या तो राम ही का राधा राम का हो एकांतिक रूप में, जैसे हनुमान एकांतिक रूप में करते हैं, और न तो राधा कृष्ण का एकांतिक भजन में। मैं भी पहले राम का भजन करता था, यहाँ तक कि स्वप्न में भी राम का दर्शन कर दिया, और दिन रात राम राम कह करके रोता था, किंतु धीरे 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 शुद्ध वैष्णव के संग में आकर के राम ने ही हमारे ऊपर में कृपा की, इसलिए राम का चैत्र में जहाँ जाता हूँ राम का चैत्र खूब वर्णन करता हूँ, सबको रुला देता हूँ। किंतु रामचंद्र जी ने जैसे गोप कुमार जी को भेज दिया कृष्ण के चरणों में, ये इसकी आकांक्षा हमारे यहाँ नहीं पूरी होगी, क्यों? जैसे वहाँ की जनकपुर की जो राजकुमारियाँ थी, राम से कहा जी हम आपको पति रूप में वर्णन करना चाहती हूँ, जैसे सीता के आप हैं। राम सर्वज्ञ हैं, जान गए, और सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने कहा मनी मन में, तुमने हमको वर्णन किया तो हमने ग्रहण कर लिया तुमको, किंतु इस रूप में मैं राम के रूप में नहीं ग्रहण कर सकता, मनी मन तो ग्रहण कर लिया, किंतु तुम लोग गोपी के घर में जा करके द्वापर युग में गोपी होकर के आएगी, और उस समय में तुमको हम ग्रहण करेंगे। तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी जिन लोगों ने कात्यायनी की पूजा की और कृष्ण को पति के रूप में ग्रहण किया वो थी जनकपुर वाली थी। रामचंद्र जी मर्यादा से बंधे हुए, सबकी हम कहें जैसा हम प्रभु अरे सीता जी आपके पति हैं मैं भी आपको पति रूप में भजन करता, नहीं ग्रहण करेंगे, कहेंगे मर्यादा में नहीं लंघन नहीं करता। लव कुश ये अंतिम समय में राम की लीला के समय अंतिम में गोमती के किनारे नैमिषारण्य में यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा जी मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा जी आपका अधिकार नहीं है, आप अनाधिकारी हो, यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों प्रभु मैं नहीं यज्ञ कर सकता है? तो आपने सीता को जो वनवास दिया है सीता जी को ले आइए, तब फिर यज्ञ कर सकते हैं। बिना पत्नी का यज्ञ अश्वमेध नहीं होता है। उन्होंने कहा जी ये तो मैं नहीं कर सकता, किंतु यज्ञ मुझको जरूर कराइए। तब ऐसा करो, तुम्हारे बाप के तो 360 विवाह थे, तो तुम भी एक और शादी कर लो नई और यज्ञ करो। ये भी नहीं कर सकता, सीता को छोड़कर क्या मैं विवाह नहीं करूँगा, फिर कैसे करो? नहीं तब हमारा यज्ञ तो जैसे कि, अच्छा तो ऐसा करो सीता जी की मूर्ति बनाओ और उनको बाएं तरफ में बैठा करके यज्ञ करो। अच्छा ये मंजूर है, क्योंकि सीता जी तो नहीं उनकी मूर्ति है। बैठा करके यज्ञ किया और लौकुश उसी समय में दोपहर में आते थे गान करने के लिए, यज्ञ समाप्ति हो जाती थी 10-11 बजे और सभी लोग प्रसाद पा करके वहीं पर सभा बैठती थी। अभी भी वैष्णव में ऐसा नियम है, खाने पीने के बाद में सो मत, एक आश्रम में बैठ करके सब लोग मिल करके भगवान का गुणानुवाद करो, कोई हरि कथा हो, चर्चा हो, इस तरह से। आज सो गए खा पी करके तो सभी गड़ गए, दिन में तो सुना ही नहीं चाहिए, तो वहीं पर चर्चा हो रही है। तो वहीं पर आए और राम का लीला वर्णन करने लगे, वाल्मीकि जी ने उनको सिखा दिया था। इतना सुंदर गला और रूप भी कैसा, राम जैसे, राजीव लोचन जैसे उनका, ऐसा सुंदर रूप, किशोर अवस्था भी उठती, अभी किशोर अवस्था, अभी पौगंड से किशोर की तरफ में प्रवेश कर रहे, 10-9 वर्ष की है उनकी। जब गायन करने लगे सारी श्रद्धा मुग्ध हो गई। अब सीता जी का, रामचंद्र जी का जब वनवास वर्णन किया तो सभी लोग रोने लगे, कौशल्या इत्यादि सभी, राम भी लक्ष्मण भी रोने लगे। इसके बाद में सभा समाप्त हुई। जब वो घर जाने लगे तो रामचंद्र जी ने कहा इसको कुछ उपहार दो, पहले इसको पूछो परिचय, ये इसके किसका बेटा है, कौन परिवार का है, और इसके बाद में ये सोने के थाल में सरफिया देता हूँ, इसको दे दो। लक्ष्मण जी ने जाकर के परिचय पूछा, जो तुम्हारे बाप का पिताजी का नाम क्या है? नहीं, ये आप अद्भुत हैं तो शास्त्रज्ञ हैं, और आप हमसे पूछते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी का माता पिता का नाम नहीं पूछना चाहिए, कहाँ उसका जन्म हुआ, कुल का परिचय नहीं पूछ करके, अधिक से अधिक आप पूछ सकते हैं हमारे परिचय, तभी हमारे गुरु जी वाल्मीकि जी है, बस यही हमारा परिचय है, गुरु ही परिचय है। इसलिए हम ब्रह्मचारी लोग अपना और कुछ परिचय नहीं दे करके हम कहते हैं कि हम अपने गुरु के इस परंपरा में हम उनके शिष्य हैं, बस यही उनके लिए है। ज्ञान उपदेश पूछो, ये मत पूछो जी आपकी बीवी है, आपके लड़के हैं, आप कहाँ के रहते थे, वो आपकी बोली तो लगती है जो बनारस की है, वाराणसी जैसी है, आप उधर के रहें, आपकी स्त्री हैं, बेटे वेटे हैं, ये मत पूछो। सुनकर के बड़े लज्जित हुए, अंत में वो देने लगे असरफी, मुझे इसकी क्या आवश्यकता हम लोगों की, वाल्मीकि जी के अपने गुरु जी के आश्रम में रखते हैं, केले अमरूद सब लगे हुए हैं, तरह तरह के मूल कंदा इत्यादि हैं, हाथों में ले लेते हैं, खा लेते हैं, बस यही हमारा जीवन है, हमको इसकी क्या जरूरत है, न कपड़ों की जरूरत है, न सोने की माला की जरूरत है, न हार की जरूरत, ये तो आपके काम में आएगी, आप रखिए उनको दीजिए, हमारे लिए कोई इसकी उपयोगिता नहीं है। उसकी इस चीज़ को देखा के और भी प्रसन्न हो गई, और पता लगा ये किसका बेटा है, और भी कह दो। इधर में वो जब आश्रम में गए तो सीता जी इसके लिए बहुत प्रतीक्षा, आज विलंब हो गया, उन्होंने पूछा भाई क्यों विलंब हो गया तुम लोगों की, अब दोनों गोदी पर दोनों को ले लिया प्यार से, बोले आज मैं हम लोग एक सभा में गए थे और वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जब ये सुनाया हमने वाल्मीकि रामायण का, सभी लोग गदगद हो गए, भैया एक चीज़ हमने देखी, देखी जैसे ठीक तुम्हारी जैसी ही एक मूर्ति रखी थी, तुम बोल रही है वो बोलती नहीं थी, बस यही अंतर, ठीक तुम्हारा रूप रंग जो कुछ भाव इत्यादि सब ऐसा मालूम पड़ता है जी वही मेरी वो बैठा है जी, मैं नहीं समझता है जो किसकी मूर्ति किस लिए रखी क्या, और हम उसी के साथ में बैठ करके सुनते हैं ये यज्ञ करता है। बस सीता जी एकदम रो पड़ी, किस लिए रोया, रानी को प्रत्याय, राम नहीं प्रत्याय किया, किंतु तभी तो किया, तभी किया, साधारण तो ये समझते हैं कि उन्होंने सीता जी का प्रत्याय किया, ये मर्यादा में बधे हुए हैं। कृष्ण से कोई कहे जी राधा जी बहुत उल्टा है न? ये प्रेम करती है छिप करके, कृष्ण क्या करेंगे, छोड़ देंगे या गला उतार देंगे उसका, उनको कोई भी जाए आपको हम पति रूप में वर्ण करते ठीक है चले आओ, हम आपको दास रूप में बहुत अच्छा है वो मस्तु। कोई कहेगा जी मैं आपका पुत्र आपको मैं पुत्र बनाना चाहता हूँ, आपकी मैया और बाप बनना, बाओ एव मस्त आ जाओ कोई मैं आपका बिना कोई रूप का ही आपका उपासना करें, हाँ ठीक है निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करो, कुछ भी बाकी नहीं उनके लिए क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, उनके नाम में सब कुछ आ जाता है। इसलिए इन चीज़ों को समझ करके कीर्तन यदि करें एकांतिक रूप में, कृष्ण को ही अपना सर्वाराध्य बना लें और उसी में ही सबका कुछ देख लीजिए, बस इसमें भजन की सिद्धि भी हो जाएगी, लोगों का बुखार हो जाए, अपना बुरा कुछ मत मानिए, भगवान आपका कल्याण कर। बहुत सुंदर आपका गला है, बस महामंत्र दे करके आरम्भ करके बस पाँच दो मिनट। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। कहीं लौकिक रीति में हमने सुना है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, ढाई अक्षर का ये बना हुआ प उसमें लग गया है र उसमें एकार लग गया है प्रेम, यह ढाई अक्षर है। किंतु जो पढ़ा सो पंडित हो, आज जो नहीं पढ़ा वो पंडित नहीं। जगत के लोग पढ़ पढ़ करके मर गए, कोई पंडित नहीं हुआ, प्रेम नहीं पढ़ा, ढाई अक्षर पढ़ने को नहीं। इसी को हम एक रामचंद्र जी के उपाख्यान से और कृष्ण के उपाख्यान से दोनों लीलाओं से हम बतलाएंगे ये क्या चीज प्रेम है। अब तो जिसको पानी पीना है वो पी ले, इसके बाद में बंद कर दो नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा, जिसको पानी लेना है वो ले लो। हमारे महाप्रभु के कृपा पात्र रूप गोस्वामी ने उत्तम भक्ति का लक्षण बतलाया। इसके पहले भक्ति के लक्षण वेदों में और दूसरे पुराणों में ये सब उल्लिखित हैं, किंतु महाप्रभु जी की प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने भक्ति का जो डेफिनेशन दिया, परिभाषा, वो अपूर्व था। भगवान के चरणों में फूल देना ये भक्ति है, साधारण लोग ऐसा समझते हैं। भगवान का नाम ले लेना ये भी भक्ति है। माता की और पिताजी की भक्ति भी ये भक्ति है। इसी तरह से साधारण रूप में ये सब क्रियाएं भक्ति को मान लिया जाता था, या साधारण लोग अभी भी मानते हैं। कुछ लोग तो ये ऐसा भी कहते हैं चींटी को, बहुत से लोग चीनी और सत्तू मिला करके देते हैं, कबूतर को वो देखा है जयपुर में बोरा का बोरा ज्वार लेकर के छींट देते हैं और दिन रात कबूतर लोग खाते रहते हैं। जयपुर के मंदिर में भी ऐसा होता है, ये सब क्रियाओं को ही भक्ति मान लेते हैं। किंतु भक्ति किसको कहते हैं, हमारे रूप गोस्वामी ने कहा, इसके पहले भक्ति के लिए बतलाया सा परानुरक्ति ईश्वरे। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो परानुरक्ति है उस अनुरक्ति को कहते हैं भक्ति। कहीं कहीं ये लिखा गया लौकिकी वैदिकी या वापी जा क्रिय क्रियते मुने हरि सेवानुकुलेव साकार्या भक्ति मिच्छता। लौकिकी वैदिकी वापी जा क्रिया क्रियते, लौकिकी क्रिया वैदिकी क्रिया और जो लौकिकी और वैदिकी नहीं है लोक अनुसार में चल रही है कोई भी क्रिया यदि भक्ति के अनुकूल है कृष्ण के प्रीति के अनुकूल है तो उसको उस क्रिया को भी भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी ने श्रीमद्भागवत में भी लिखा सवै पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहे तुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। परीक्षित महाराज का काल आ गया है, मरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, संसार से उन्होंने अपनी आसक्ति हटा ली। 7 दिन के अंदर में तुमको जो कुछ करना है कर लो, जिस ऋषि के पुत्र ने अभी संपाद दिया था उन्हें 7 दिन का तुमको समय में इसमें जो इच्छा हो सो कर लो। क्या करेंगे, इस गंगा के किनारे बैठ गए। प्रायोपवेशन पानी के लिए ही तो हमारी यह दुर्गति हुई, ऋषि के गले में सांप डाला, अब पानी भी नहीं पिएंगे।